पूछो, एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा भगवान कितना बड़ा है? पिताजी कहते हैं, वो देखो दूर आसमान में जो एरोप्लेन जा रहा है ना, उतना बड़ा। बच्चा कहता है, इतना छोटा एरोप्लेन तो इतना सा है, इतना छोटा। पिताजी कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक स्थान पर ले जाता हूं, एयरपोर्ट पर लेकर आते हैं। वहां पे एयरपोर्ट हैंगर होता है, एयरपोर्ट हैंगर अर्थात जहां पर हवाई जहाज खड़े रहते हैं, और उस बच्चे को एक हवाई जहाज के सामने खड़ा करते हैं। और पिताजी कहते हैं, ये है एयरपोर्ट, ये है एरोप्लेन। तो बच्चा कहता है, इतना बड़ा? पिताजी कहते हैं, भगवान भी इसी तरह है, वो कितना बड़ा है ये उस पर निर्भर करता है कि तुम कहां खड़े हो। यदि तुम उससे बहुत दूर हो तो वो छोटा सा है, और यदि तुम उसके बहुत समीप हो तो वो बहुत बड़ा है। इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। स्वयं से प्रश्न पूछना है, मैं कहां खड़ी हूं? क्या हमेशा भगवान समीप नजर आता है? क्या हमेशा बहुत बड़ा नजर आता है? क्या हमेशा लगता है कि वो मेरे साथ है, मेरी छत्र छाया है, जहां मैं हूं वहां वो है? मैं अकेली नहीं, वो निरंतर मेरे साथ है। ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म, चौथी शताब्दी, फोर्थ सेंचुरी, एक संत का गायन है, महिला संत, इसका नाम है थेकला। वो अभी 17-18 वर्ष की है। उसे किसी से प्यार है, एक युवक से। उस युवक को भी उससे प्यार है और दोनों शादी करने वाले। एक दिन वो थेकला अपने घर के बालकनी में खड़ी है, निहार रही है दृश्यों को। जीसस क्राइस्ट पर सूली लगे हुए अभी 200-300-400 वर्ष हुए हैं लगभग। ईसाई धर्म फैल रहा है धीरे धीरे विरोध के साथ, और एक ईसाई प्रचारक सेंट पॉल भगवान के गीत गाते हुए सड़क से गुजर रहा है, कहता है, वो जो पवित्र है प्रभु के समीप है, वो जो ब्रह्मचारी है, he that is chaste is near to the God। और वो थेकला वो गीत सुनती है, स्तब्ध रह जाती है, he that is chaste is near to the Lord, वो जो ब्रह्मचारी है वो प्रभु के निकट है। He that is chaste shall enter the kingdom of God। वो जो पवित्र है वो प्रभु के द्वार में प्रवेश करेगा। देख ला वो गीत फिर दूसरे दिन सुनती है, फिर दूसरे दिन वही सेंट पॉल एक ईसाई फकीर एक तारा लिए हुए सड़क से गुजर रहा है गीत गाते हुए। तीसरे दिन सेंट थेकला देख रही है उसको, स्तब्ध है, और देखते देखते ही अंदर परिवर्तन, और देखते ही देखते उसकी वाणी उसके गीत ने उस पर ऐसा असर कर दिया कि देखते देखते ही उसने संकल्प कर लिया कि मेरा ये जीवन किसी देहधारी के लिए नहीं है, मेरा ये जीवन केवल एक परमात्मा के लिए है, और संकल्प कर लिया कि मेरा जीवन संपूर्ण पवित्र हो। ये माता कन्याओं की और वो कहती है कि अब मैं शादी नहीं कर सकती, माँ उसको समझाती है क्या कर रही हो, उसका होने वाला पति उसको समझाता है, पर वो अब सुनने को तैयार नहीं, किसी का भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो संकल्प बीज की तरह सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन की भूमि में घुस गया। मेरा जीवन संसार के लिए नहीं, भगवान के लिए, मैं उस दलदल में नहीं जाऊंगी। उसकी माँ उसे बहुत समझाती है, उसका होने वाला पति नहीं सुनती, नहीं मानती है, धमकाती है उसकी माँ, उसका पति उसको धमकाता है, शारीरिक पीड़ाएं देते हैं उसको, पर वो मानने को ही तैयार नहीं। बहुत उसके साथ यात्री बहुत अत्याचार करते हैं, पर वो मानने को तैयार नहीं है। जब सब कुछ करने के बाद भी वो जिद पर अड़ी हुई है, उसका होने वाले पति उसकी बहुत सारी झूठी शिकायतें वहां के राजा से करता है, और कहता है कि अगर सारी कन्याएं सारी स्त्रियां ऐसे करने लगे तो राज्य में क्या होगा, इसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए। राजा की तरफ से उसको समझाया जाता है, नहीं मानती, और जब वो नहीं मानती तो उसे सजा सुनाई जाती है, ऐसी सजा जो आज तक किसी को नहीं सुनाई गई थी उस समय, जिंदा जला देने की। सारे लोग नगरवासी खड़े हैं, लकड़ी का एक तख्ता उसे बांध दिया ताकि सब देखे, ऐसा अगर कोई करे तो ये होगा हश्र। आंख और थे ग्लांदर से कह रही है, ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, हे प्रभु, ओ जीसस, वेयर आर यू, तुम कहां हो, मेरी रक्षा करो, मैं अपने आप को तुम में समर्पित करती हूं, तुम ही सर्वस्व। और अचानक द फर्स्ट मिरेकल, बारिश होने लगता है, तूफान उठता है, हाहाकार होता है यहां वहां, बारिश होती है, पांव से आग बुझ जाती है, उसकी रस्सियां खुल जाती है, और साथ साथ वो जो सेंट पॉल था उसे भी पकड़ा गया था, उसे भी बहुत प्रताड़ित किया और देश निकाला दे दिया गया था। सब यहां वहां हलचल होती है और थेकला वहां से निकल जाती है, दूसरे गांव पहुंचती है, वहां सेंट पॉल से मिलता है, दोनों फिर आगे बढ़ने लगते हैं किसी दूसरे शहर में। उसके पति को पता चल जाता है वो बच गई और कहीं और गई है, वो वहां पहुंच जाता है, फिर से समझाता है और बहुत सी जो जबरदस्ती करता है, और वहां पर भी जब वो नहीं मानती फिर से शिकायत लगाता है वहां के राजा से, फिर से सब कुछ होता है और फिर से उसे पकड़ा जाता है और फिर से सजा दी जाती है। इस बार की सजा बड़ी खतरनाक थी, एक अखाड़ा जिसमें तीन भूखे शेर के बीच में उसे डाल दिया जाता है, और सारे गांव वाले देखने के लिए ऊपर बैठे हुए। फिर से थेकला अपने आप को समर्पित कर दिए, है प्रभु मेरी रक्षा कर। तीन शेर में से एक शेर भी होती है, थेकला इधर उस शेर में बीच में आके खड़ी हो जाती है, और वो जो दो शेर रहते उनको आने नहीं देते। फिर से तूफान जैसा होता है, वहां पर पानी होता है, तालाब छोटा सा अखाड़े के बीच, और थेकला कहती है बस अब इसी वक्त और इसी समय ईसाई धर्म में बपतिस्मा होता है, बैप्टिज्म, नामकरण। वो कहती है मैं अपने आप को आज ईश्वर को समर्पित करती, अब मेरा संसार से कोई संबंध नहीं, सेल्फ बैप्टिज्म। रबा है कोई गुरु आके यूजुअली ऐसा करता है, पर वो कहती है मैं स्वयं ही स्वयं का बाप्तिस्मा करती हूं, क्रिश्चियनाइजेशन, और वो वहां से फिर निकल जाता है। फिर दूर किसी स्थान पर रहती है टर्की और अपना सारा जीवन वहां बिताती है। उसकी प्यूरिटी की वजह से धीरे धीरे उसमें शक्तियां प्रकट होने लगती है और वो शक्ति ऐसी होती है कि उसमें हीलिंग पावर आ जाती है। दूर दूर से मरीज उसके पास आते हैं, अकेली गुफा में रहती है, 80-90 वर्ष तक जीती है और उसके हाथों में पावर होती है। हाथ लगाते ही मरीज ठीक। तीसरा पेपर, लोगों ने छोड़ा नहीं अब तक भी। दूर दूर के गांव गांव के जो हकीम चिकित्सक, उनको जलन होती है। हमारे सारे मरीज उसके पास जाते और ठीक होके आते, उसका उसके पास आके रहता है क्या? हम जाता है मेडिसिन के, पता चलता है उसके पास चेस्टिटी ब्रह्मचर्य, ये उसकी पावर है। 3 युवकों को तैयार किया जाता है, वो है 80 वर्ष की, उसकी पवित्रता भंग करने के लिए उसको गुफा में भेजा जाता है, उसका शील भंग करने के लिए दिखाया है। वो 3 युवक आ रहे हैं, थेकला यहां, एक भगवान की याद में पीछे जा रही है, पीछे जा रही है, वो सामने से आ रहे हैं, पीछे जा रही है, गुफा है और गायन है। सत्य तो हो नहीं सकता, परंतु ऐसा शास्त्रों में, उनके शास्त्रों में लिखा है कि देह सहित वो गुफा में विलीन हो जाती है। वो गुफा आज भी है टर्की में। इस कहानी को कहा जाता है द स्टोरी ऑफ सेंट थेकला एंड सेंट पॉल। ईसाई धर्म में ऐसा एक मिसाल जहां व्यक्ति ने पवित्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। भारत में भी ऐसे 3 लोग हैं जिनके लिए कहा जाता है शरीर सहित विलीन हो गए। कौन? ऐसे 3 ही लोग जिनके लिए कहा जाता है मृत्यु का, पर ड्रामानुसार ऐसा हो नहीं सकता, कोई शरीर से कभी भी विलीन नहीं होता, गायन है। कौन? पहला मीरा। मीरा की मृत्यु का कहीं कोई वर्णन नहीं है, कहते हैं कृष्ण की प्रतिमा में वो विलीन हो गई। दूसरा संत तुकाराम महाराष्ट्र। तीसरा चैतन्य महाप्रभु जिसने भक्ति की लहर दौड़ाई पूरे भारत में, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो संपूर्ण पवित्रता इस ब्राह्मण जीवन का श्वास है और इस पवित्रता में जो पास है वो पास है, जो इसमें फेल पूरे ब्राह्मण जीवन में फेल। इस प्यूरिटी के लिए 8 बातों की आवश्यकता है। जिन्होंने डायरिया पीछे रखी है या कहीं और ले हुए, संपूर्ण प्यूरिटी की, संपूर्ण ब्रह्मचर्य की 8 परिभाषाएं, और ये पवित्रता हर स्थान में, हर समय और हर परिस्थिति में अगर हो तो पास, नहीं तो फेल। कौन कौन है जिनको प्यूरिटी बहुत अच्छी लगती है? प्यूरिटी बहुत अच्छी लगती है। जब भी किसी को देखो जो बहुत पवित्र है, आकर्षण होता है, ऐसा लगता है इन जैसा बनना चाहिए। श्वेत वस्त्रधारी पहनों को देखते हैं तो लगता है ये है जीवन और ये संसार की स्त्रियां ढेर की ढेर चक्की में पिस रही है विकारों की। प्यूरिटी का आकर्षण, पवित्र आत्माएं पवित्र आत्माओं को तुरंत आकर्षित करती है। ब्रह्मचर्य की 8 परिभाषाएं और जितनी पावर अंदर आएगी प्यूरिटी की, उतनी आत्मा बहुत शक्तिशाली बनेगी स्मरण शक्ति तेज हो जाएगी। एक बार पढ़ो और याद, संकल्प कर लो ये करना है, तुरंत हो पा सिद्ध। संकल्प कर लो ये सीखना है, टाइपिंग, कंप्यूटर, पढ़ाई, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, कुछ भी, क्योंकि माइंड फोकस्ड है, एकाग्र है। और जो प्योर नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है, प्योरिटी की धारणाएं नहीं है, उनकी बुद्धि देहधारी में फंसती, अफेयर्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। एक कन्या कहती है, हे प्रभु, मुझे कोई समझदार दूल्हा चाहिए, हे प्रभु, कोई समझदार आदमी हो तो भेजो, सब मूर्ख भरे पड़े हैं यहां। भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं, समझदार पुरुष कभी शादी नहीं करते, बेटी घर जाओ। विवेकानंद से पूछा गया था कि वो जो सभा थी उसमें तो इतने विद्वान थे, आपसे बड़े थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, फिर आपने जो बोला उसका इतना प्रभाव क्यों पड़ा? उन्होंने खुद उत्तर दिया है, That was all because of the power of Brahmacharya. I have not allowed my mind to have a single sexual thought in my life. The untouched power of Brahmacharya. The unprecedented power of Brahmacharya. कैसे हुआ ये? ये तेज और ओज से हुआ, जो प्यूरिटी का है। तो ब्रह्मचर्य की परिभाषा में आठ चीजें आती है। इन आठ चीजों में से कोई भी एक चीज अगर होती है किसी भी स्थान पर, किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में, तो वो ब्रह्मचर्य का उल्लंघन है। पहला, दर्शनम, संस्कृत शब्द है दर्शनम, देखना, आंखों से देखना। ये सुंदर है, ये असुंदर है, ये हैंडसम है, ये कम हैंडसम है, ये काला है, ये गोरा है, आंखों से दृष्टि शरीर पर पड़ रही है, देह पर पड़ रही है, चमड़ी को देख रही है, आत्मा को नहीं देख रही। भगवान के महावाक्य है, ये शरीर सांप है, सांप में विष होता है, काटेगा वो सांप, काट के आईसीयू में लेके जाके ठीक किया जा सकता है। ये सांप जब काटता है उसकी गूंज कल्प कल्प सुनाई देगी। इसलिए हमारी दृष्टि कैसी हो? बहुत प्योर, बहुत शुद्ध, सब आत्माएं हैं और आत्मा निर्लिंग है, जेंडरलेस। ये तो शरीर मिला है इस समय, इस शरीर में, स्त्री के शरीर में, पुरुष के शरीर में, कौन स्त्री कौन पुरुष, शरीर की तरफ जाओ तो शरीर की तरफ आकर्षण होगा, शरीर खींचेगा, फिर शरीर की याद आएगा, फिर वही चाहिए। माता जी कहेगी बाबा को याद करो, और कन्या सोच रही है घोड़े पर सवार, मेरा राजकुमार कब आएगा मुझे ले जाने के लिए। संसारिक इच्छा है, कृष्णा ये चाहिए वो चाहिए, ये भी करो वो भी करो, फ्रेंडशिप, इससे दोस्ती करो उससे दोस्ती करो, माया जाल। उस सर्कल में गए, एक के बाद एक अपने आप सब चालू होगा, वो कहीं पे भी रुकेगा नहीं। इसके लिए अपनी दृष्टि को शुद्ध रखना, प्योर रखना, शरीर करना पड़े, शरीर को देखने की आदत जन्म जन्म की, शरीर का आकर्षण आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है, कामुकता सबसे बड़ी व्याधि है, काम सबसे बड़ा विकार है। The test of lust and fall of man कहा जाता है, टेस्ट किया और गिरा। दूसरा स्पर्शानंद, हाथ लगाना, पहला आंखों से देखना शरीर को, यह ब्रह्मचर्य का उल्लंघन। दूसरा हाथ लगाना, स्पर्श टच, पवित्र आत्माएं हैं, ये शरीर को कोई पुरुष हाथ ना लगा सके, मन से भी नहीं, भगवान को दिया है सर्वस्व। एक कन्या पानी भर रही है पनघट पर, एक युवक आता है कहता है प्यासा हूं पानी दो, वो कहती है पानी दूंगी पर अंग से अंग ना लगे, ध्यान रखना, कहता वादा, घुटनों के बल खड़ा होता है, हाथ सामने करता है, गागर से पानी वो डालती है, वो पानी पीता है, चला जाता है। कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो जाती है बिना उनको पता चले, उनके माँ बाप तय कर देते और उन्हें पता ही नहीं कि मेरी शादी उसी से हो गई। शादी हो गई, दोनों आमने सामने है, कन्या कहती है अपना वादा याद रखना, अंग से अंग न लगे, अनटच्ड प्यूरिटी, प्यूरिटी अर्थात स्पर्श नहीं, नो टच पॉलिसी। टच में आकर्षण, चंचलता है, इंद्रियों की उद्वेग है, एक्साइटमेंट है, और उसके वश व्यक्ति हो गया एक बार कि निकल नहीं पाता, खुद ही कंफ्यूजन की स्टेज में चला जाता। एक तरफ प्यूरिटी, एक तरफ बाबा, एक तरफ इंद्रिय सुख। हमारा स्पर्श वैसा हो जैसे मां का स्पर्श है बच्चे के लिए, कितनी पवित्रता है उसमें, कितनी प्यूरिटी है। और वैसे भी कोई किसी और रीति से स्पर्श करता है तो सामान्य संसार की स्त्रियों को भी किसी को भी पसंद नहीं, स्पर्श स्पर्श में अंतर है। हम भी किसी को इस किसी भी रीति से जितना हो सके अवॉइड टच। तीसरा संस्कृत शब्द है केली, अर्थात खेलना, साथ में स्त्री और पुरुष का खेलना, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, कोई भी गेम्स। और सबसे सूक्ष्म व्हाट्सएप गेम्स, एक मैसेज इधर से और एक मैसेज उधर से, उधर से एक मैसेज अभी तक रिप्लाई नहीं आया, आएगा और आता ही नहीं, और फिर दुख, डबल टिक तो हुआ है अर्थात पढ़ा फिर भी रिप्लाई नहीं, ज्यादा दुख, रूठना, रूसना, नाराज होना, ये भी खेल ही है एक, इधर से उधर, उधर 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 से कितनी एनर्जी चली गई, ऊर्जा चली गई, संकल्प चले गए। उतना ही समय अगर ज्ञान का अध्ययन किया होता तो आत्मा शक्तिशाली हुई होती। और किसके लिए संकल्प चला रहे, किसी व्यक्ति के लिए, ऐरा गहरा मथु गहरा, क्या मिलेगा उससे, क्या देगा। एक शिकारी भटक गया जंगल में, तीन दिन तक कोई नहीं मिला, न पशु न पक्षी न मनुष्य, भटक रहा है, और आखिर एक चाणक एक दिखाई देता है, झाड़ के नीचे कोई बैठा है मनुष्य, कितनी खुशी होती है, भाग कर उसके पास जाता है, वो भी जो बैठा है झाड़ के नीचे, वो भी तीन दिन से भटका हुआ है, तीन दिन से किसी को ढूंढ रहा है, कोई भी नहीं मिला, दोनों मिलते हैं, इतने खुश होते हैं। अब दोनों ही भटक रहे हैं, मार्ग तो दोनों को नहीं पता, एक भिखारी दूसरे भिखारी से मिला, साथ साथ भीख मांग रहे, इसे संसार विवाह कहता है. This is known as marriage. ना इसके पास शक्ति है ना उसके पास, ना इसके पास खजाना ना उसके पास. कहते हैं हम दोनों मिल के चलेंगे, साथ साथ तुम मेरे हम सफर, हम नवा, हम साया, हम साथी, सदा साथ, जीवन मरण परंत साथ, जन्म जन्म की कसमें. कौन सी कसमें? दोनों के हाथ में कटोरा, दे दो खेलना. अवॉइड आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स ऑल्सो. साथ साथ पिकनिक, साथ साथ ये, साथ साथ वो. लिबरल थिंकिंग, मॉडर्न है, ये सब ओल्ड लोगों की थिंकिंग. चौथा प्रशंसा, स्तुति. बस वही अच्छा लगता है, उसी की तारीफ करना, उसी की स्तुति करना, उसी के बारे में बोलना, उसी के बारे में कहना. वो भाई बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी सेवा करता है, दिखता भी अच्छा है, उसकी हर बात अच्छी है, उसकी हंसी अच्छी है. हंसता है तो लगता है आह फूल बरस रहे, ऐसा कोई चाहिए. रोना आ जाए तो कंधा चाहिए, रखू और रो आह. कोई पूछे कुछ चाहिए क्या, बीमार पड़ जाओ तो कोई पूछता रहे बार बार. प्रशंसा. और जिसमें मोह होता है सब कुछ उसका अच्छा लगने लगता है, और जब लड़ाई होती है और झगड़ा हो जाता है तो उसमें सब दुर्गुण दिखाई देने लगते हैं. पता नहीं हिम्मत ही मारी गई थी, ऐसे कहते हैं ना सभी, इधर भी और उधर भी दोनों तरफ. वो वीडियो सबने देखा है, पति बर्तन मांज रहा है, इंटरव्यू में पूछा जाता है आपके पास दो ऑप्शन है, वो देखता है. ऑप्शन ए, आपको अपना सारा जीवन अपनी पत्नी के साथ गुजारना है. ऑप्शन बी, वो कहता है आई टेक ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी. अभी बताया भी नहीं, वो कहता है ऑप्शन बी. दुखी हो गया, कुछ भी देने को तैयार, ऑप्शन भी. स्तुति प्रशंसा. बाबा के महावाक्य है, बाप के सिवा किसी की तरफ आकर्षित ना हो. अगर किसी में कोई गुण कोई विशेष चीजें भी दिखाई दे रही है, वो किसने दी है, दाता कौन है, बाप है, भगवान ने दी है, उसके अंदर ये विशेषता भरी किसने है, उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं होना है. व्यक्ति तो हो देगा, आकर्षित उसकी तरफ होना है जिसने वो दिया है, जो सौंदर्य का सागर है. व्यक्ति की तरफ आकर्षित होंगे तो फंसेंगे, दुखी होंगे. चौथा स्तुति, किसी की विशेषता से प्रभावित नहीं हो जाना है तुरंत. जब जब हुए हैं व्यक्ति धोखा मिला, क्योंकि जो सामने से दिखाई दे रहा है वैसा अंदर से नहीं है. व्यक्ति मुखौटे पहने हुए घूम रहे, दिखाते कुछ है कहते कुछ है, ऊपर से सच्चाई दिखाते अंदर से खोट. इसलिए किसी से भी प्रभावित नहीं होना है, कैसा भी होने दो, उसको कितना भी अच्छा होने दो, वो भी ब्रह्मचर्य का खंडन है. स्तुति. पांचवा गुह्य भाष्य, प्राइवेट टॉक्स. एकांत में बैठ के किसी भाई के साथ लंबी लंबी बातें, चाहे कितनी भी ज्ञान युक्त बातें क्यों ना, उसमें भी धोखा है. युधिष्ठिर को पूछा जाता है कि जब तुम्हारी मां तुम्हारे पास बैठी हुई है, क्या तुम्हारा मन विकार से मुक्त है काम से? वो कहता है आई एम नॉट श्योर. भीम से नहीं पूछा जा रहा है, नकुल सहदेव अर्जुन से नहीं, धर्मराज से पूछा जा रहा है. He says, I am not sure. इतना प्रभाव. हमारे ओपीडी में जैन साध्वी आती है, क्या तकलीफ है, लिखा पर्ची पर, केस पेपर, ये लो। वो कहती है नीचे रखो, डायरेक्ट नहीं देंगे, पेपर नीचे रखो, टच नहीं करेंगे। अगर वहां कोई पुरुष बैठा है ओपीडी की चेयर पे, पहले बैठी नहीं, खड़े रहती है, टाइम है उनका, इतने मिनट कोई नहीं बैठना चाहिए, उसके बाद ही बैठेगी। ध्यान है, सीखा है, लंबी लंबी फोन पर बातें, इधर का उसको सब पता है, उसका इधर सब पता है, इस समय वो क्या कर रहा है, और बात उसे पता है इधर की, इधर की हर बात उसे पता है। कैसे? 3 मिनट ठीक है, 3 मिनट से ज्यादा किसे बात करने की आवश्यकता नहीं। स्टॉप ऑनलाइन टॉक्स, ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन, उसमें धीरे धीरे विकार प्रवेश होगा। शेयरिंग ऑफ फोटोज, शेयरिंग ऑफ वीडियोज, वीडियो कॉलिंग सब चालू होगा। स्टॉप में स्टॉप। छठवां संकल्प, समीप जाने का संकल्प, प्राइवेट मिलन, प्लानिंग, कहां मिलना है, रेस्टोरेंट, सीशोर, कॉलेज, लाइब्रेरी या सेवा के बहाने सेंटर में। लक्ष्य है मुख्य मिलना, ऊपर से सेवाओं के लेबल चिपकाओ ताकि सुरक्षा भी रहे, कोई कुछ बोले ना। आत्मवंचना इसे कहा जाता है हिंदी में, सेल्फ डिसेप्शन, आत्म प्रवंचन, सेल्फ हिपोक्रेसी, सेल्फ लाइन, खुद खुद को धोखा दे। संकल्प। सातवां अध्यावसाय, अध्यावसाय अर्थात संस्कृत शब्द है वास्तव में मिलना। पहले प्लानिंग की, उस व्यक्ति से प्यार है, उस व्यक्ति से ही मोह है, वही व्यक्ति चाहिए, बातें बढ़ाइए, लंबी बातें चली, मिल रहे हैं, वास्तव में मिलना, ये ब्रह्मचर्य का अखंड है। लास्ट द एक्ट, काम क्रिया, काम कटारी, वो तो सबसे लास्ट, जिसे संसार काम विकार समझते हैं उसके पहले ये सात चीजें, इन सातों में से किसी एक का भी उल्लंघन हो रहा है वो ब्रह्मचर्य का उल्लंघन। तो 8 बातें हैं टोटल, स्पर्शनम, दर्शनम, स्पर्शनम, प्रशंसा, केली, गुह्य भाष्य, संकल्प, अध्यावसाय और 8वां क्रिया। उस तक डायरेक्ट नहीं पहुंचता है, उसके पहले ये सब करता है। समझना है इसको, मन को समझना है, मन की टेंडेंसी को समझना है, कैसे मन काम करता है, क्या चाहिए उसे, किसी का टच चाहिए, क्या मिलेगा उसे, क्या है इस देह में, इतना देह का आकर्षण क्या है। हॉस्पिटल में चक्कर लगा के देखना, पेशेंट्स को देखो, गरीब रात कैसे पड़े हुए, टीबी के पेशेंट, वेयर इज द ब्यूटी। और जो व्यक्ति किसी स्त्री की तारीफ भी करता है, वो तारीफ क्यों कर रहा है, इसलिए नहीं कि वो व्यक्ति सुंदर है, उसका लक्ष्य प्रेम नहीं है, काम है, ऊपर से तैयार कर रहा है सामने के व्यक्ति को, स्वार्थ है अंदर छिपा हुआ। हमारा ये जीवन बहुत श्रेष्ठ जीवन, तुम्हारी जीवन स्वतंत्र जीवन, किसी का बंधन नहीं। गृहस्थी में घुसना अर्थात अपने आप को गिराना, किसी पर डिपेंडेंट हो जाना, किसी का दास बनना है, तुम्हारे चरणों की दासी। पत्र लिखती थी ना भारत की महिलाएं, मेरे पति परमेश्वर और नीचे तुम्हारे चरणों की दासी, वहां पैरों की जूती कहा गया, क्यों बंधन को स्वीकार? अपने डायरी में एक लाइन लिख के रखनी है, सभी कुमारी, मुझे कोई भी बंधन स्वीकार नहीं है, आई रिजेक्ट ऑल बॉन्डेजेस। कुमार बाहर इंतजार कर रहे हैं कब ये बाहर निकले और हम आए हैं। तो इस क्लास को यही पूरा करते हैं, जो ड्रिल कराई ऐसे ड्रिल करते रहना है। योग का खान अभ्यास, मुरलियों का चिंतन अध्ययन, प्योरिटी की बुक है जगदीश भाई की लिखी हुई, जिसने नहीं पढ़ी वो पढ़े। एक दूसरा इंटरनेट पर एक बुक है प्योरिटी की, द प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य स्वामी शिवानंद, टाइप करो तो आ जाएगा HTML पूरा इंग्लिश में। हिंदी चाहिए तो वो मंगानी पड़ेगी ऋषिकेश से, वो भी आ सकती है। और ब्रह्मचर्य की सर्वश्रेष्ठ किताबों में से वो एक श्रेष्ठ किताब है, द प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य बाय स्वामी शिवानंद। तो अपनी प्योरिटी को पढ़ाते हैं।